శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. ఆజ్ కే ఇస్ గ్లోబల్ సమిట్ కే పహలే సత్ర మే ఇస్ భవ్య డైమండ్ హాల్ మే ఆప్ సభీ కా బహుత్ బహుత్ హార్దిక్ స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై, స్వాగత్ హై. राजयोग मेडिटेशन सेशन चार दिन चलने वाले हैं, सुबह 7 से 8. इसमें आज सबसे पहला सत्र प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का संक्षिप्त इतिहास सुनाने के लिए हम सबके बीच आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी हम सबके बीच उपस्थित है. हम सभी दीदी जी का करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे. दीदी जी आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है. मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि गुलदस्ते के द्वारा आपका स्वागत करें. आदरणीय राजयोगिनी मनोरमा दीदी जी, राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मनोरमा दीदी, आपका जन्म एक धार्मिक प्रवृत्ति के परिवार में हुआ. आप अपने बाल्यकाल से ही इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ गए. प्रारंभिक काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा क्षेत्र में आप संलग्न रही. आकाशवाणी, दूरदर्शन पर समय समय पर आपके कई कार्यक्रम आते रहे. वाद विवाद, भाषण प्रतियोगिताओं में भी आपने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किए हैं. वर्तमान समय आप प्रयागराज और उसके आसपास के कई सेवा केंद्रों का कुशल रूप से संचालन कर रहे हैं. 1970 में आपने अपना जीवन संपूर्ण रूप से इस मानव सेवा में समर्पित किया. अनेकानेक अभियानों में आपका सहयोग रहा है और आपने कई अभियानों का नेतृत्व भी किया है, जैसे कि युवा सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण जागृति, ग्राम्य विकास अभियान आदि आदि. इलाहाबाद में 3 महाकुंभ एवं 5 अर्धकुंभ में ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आध्यात्मिक मेलों का भी आपने बहुत सुचारू रूप से संचालन किया है. वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारी की जो एक सिस्टर कंसर्न है राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की, उसके अंतर्गत जो धार्मिक प्रभाग है उसके आप चेयरपर्सन है, उसकी आप अध्यक्षा है. हिंदी भाषा पीठ की ओर से आपको सारस्वत सम्मान से नवाजा गया है. तो ऐसे बहुमुखी प्रतिभा की धनी हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी से मैं अनुरोध करती हूँ कि ब्रह्मा कुमारी का इतिहास आप हम सभी को संक्षिप्त में सुनाए. ओम शांति.
ओम शांति. परमपिता परमात्मा की इस घर में आपका कोटि कोटि स्वागत है. आप पधारे और जहां पधारे हैं वहां का परिचय होना बहुत जरूरी। अगर परिचय ही नहीं होगा तो कहेंगे वो दीदी ले आई हैं, उन्होंने हमको कहा था चलो तो हम चले आए। आपका अपना घर है भगवान का घर, माना आपका अपना घर। आप ये समझकर यहाँ जीवन के ये जो अमूल्य दिन हैं इन्हें व्यतीत करेंगे। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जहां तक इतिहास की बात आती है तो आज से बहुत साल पहले, जिसको कहते हैं 1936 में एक दीपक जला था जब भारत अखंड था, वो भी सिंध प्रांत में, अखंड भारत के उस सिंध प्रांत में एक दीपक जला था जो आज प्रकाशित होते हुए संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रहा है। परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि पर बहुत ज्यादा अनैतिक गतिविधियों को देखा तो परमात्मा को पुनः सृष्टि की स्थापना की संकल्पना हुई। जैसा कि हमारे ग्रंथ भी कहते हैं, गीता स्वयं में कहती है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। मैं सृष्टि पर आता हूं सृजन करने। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जब जब होय धर्म की ग्लानी बाढ़ई अधम असुर अभिमानी तब तब धर प्रभु मनुज शरीरा हरहि सकल सज्जन की पीड़ा। कुछ तो हुआ होगा जो हमारे इन महाकवियों ने उल्लेख किया है कि जगत नियंता को भी एक संकल्प ना हुई। अगर उर्दू में कहें तो होती है जब भी हाजत दुनिया को रहनुमा की, लेती हैं पाक रूहें फौरन ही जिसमें खाके। कुछ तो होता है और ऐसे ही हालात में जगत नियंता को जब ये संकल्पना हुई तो कहते हैं परमात्मा करण करावन हार है, वो करता नहीं करा लेता है। उसने कुन कह के क्या गुनगुनाया, दुनिया ने समझा समझ में ना आया, ऐसा है वो जगत नियंता। पिताश्री जी का चित्र आपने कई स्थानों पर यहां देखा होगा, योग कक्ष में, तपस्या धाम में। ये वो शख्सियत है कि जिसने सिंध में एक संपन्न नैतिक मूल्यवान शिक्षक के परिवार में जन्म लिया था और बड़े ही संस्कारों से युक्त इनकी पालना की जा रही थी। उस समय लेखराज नाम रखा गया। कुछ समय तक शिक्षा चलती रही यथावत, किंतु पिताश्री के चले जाने पर उस शिक्षा में व्यवधान आए और आपके चाचा जी ने कहा क्या करेगा, पढ़ के बहुत हो गया, अभी बिजनेस में हाथ बटाओ। और वो बिजनेस जो करते थे अनाज का और चीजों का, काफी बड़ा बिजनेस था। हाथ बटाने के लिए पिताश्री जी बैठते थे मगर उनके अंदर जो दयालु और कृपालु भाव थे तो जब कभी देखें कोई ऐसा कमजोर है कुछ ज्यादा दे दें, कभी कुछ ऐसा कर दें, तो उनके चाचा जी को लगा कुछ कहीं गड़बड़ हो रही है, ये तो बिजनेस बिठा देगा। तो उन्होंने कहा आप बड़े हो गए हो, कुछ दिन ही किया उन्होंने, अभी तुम अपना कुछ कार्य करो। तो वहां से वो हटे और उन्होंने जवाहरात का काम प्रारंभ किया, बहुत पारखी दृष्टि थी और आपने हीरे जवाहरात का शुरुआत किया हैदराबाद सिंध से। ये सफर उनकी जिंदगी का बढ़ता गया, वहां से कलकत्ते तक आए और कलकत्ते में एक गद्दी बनाई, एक गद्दी मुंबई में, और अच्छे पल्लवित होने लग गए। जैसे जैसे व्यापार बढ़ता गया, उनका नाम बढ़ता गया, लोग सिंध समाज के अंदर बहुत सम्मान से दादा लेखराज कहकर बुलाया करते थे। आपके आभूषण राजघरानों तक पहुंचने लगे और राजघरानों का परिचय प्रगाढ़ होने लगा। वो चाहे राजा उदयपुर हो, चाहे राजस्थान के राजा हो, चाहे गुजरात के हो, दादा परिवार के साथ परिवार बना, विवाह हुआ, बच्चे हुए, वो बच्चे बच्चियों को कभी भी दादा ने आभूषण दुकान में लगाए होंगे लेकिन कभी लेके नहीं गए। और वो सबसे पहले जब बनाया करते थे तो अपनी बेटियों को पहनाते थे, और वो बच्चियां जब उनके साथ जाती थी तो रनवास देखते ही रानियों के मुंह से निकलता था यही जेवर चाहिए, और उसी तरह के आभूषण उन्हें दे दिए जाते थे। तो ये एक बड़ी मना बिना कहे कुछ कर लेना, राजा ही खुद कहते थे कि लखी बाबू ये संस्कार राजा होने के आप में हम में नहीं, हम तो राजा ऐसे ही बना दिए गए हैं। कभी भी सब कुछ करते हुए अपने नैतिक मूल्यों में कभी उन्होंने समझौता नहीं किया। यहां तक कि क्वीन विक्टोरिया का कलकत्ते में बहुत आवागमन होता और वहां से उनके लिए खास दादा ने एक बक्कल बनाया था गोल्ड का, जिसमें उन दिनों में ट्विनिंग होती थी, और वो लेकर के गए। बहुत दिन बाद वो जो बच्ची थी जिसने पहना हुआ था यहां यज्ञ में समर्पित हुई, और जब वो दादी जी लंदन गई थी एक बार निमंत्रण पे, उन्होंने म्यूजियम में देखा, कहा इसमें ट्विनिंग होती होगी, तो उनको लगा अरे इनको कैसे मालूम कि इसमें ट्विनिंग होती होगी, तो बताया उन्होंने कि ये मेरे लौकिक पिता ने बनाया है इसलिए मुझे मालूम है। रानी विक्टोरिया तक खबर गई, उन्होंने बुलवाया और बहुत प्यार से गले मिली। तो दादा का कार्य अपने आप में चल ही रहा था और उसके साथ साथ उनके अपने नैतिक मूल्य की नियमित गीता का अध्ययन करना, उससे कोई समझौता नहीं। चाहे कहीं जाएं, सफर में भी रहें तो वो गीता जेब में रहती थी। आध्यात्मिकता का सानिध्य, गुरुओं का सानिध्य बनता गया, एक नहीं दो नहीं अनेक गुरु किए उन्होंने, जिससे जो मिला। जैसे वो कहते ना दत्तात्रेय के बहुत गुरु थे, तो उन्होंने उस तरह से अपने आध्यात्मिक जीवन की यात्रा को भी जारी रखा। और इसी यात्रा के दरमियान गुरुओं को जो सम्मान देते थे, सदैव उनका कहना रहता था गुरु का बुलावा काल का बुलावा है, जब भी कोई आवाज दे दे तो वहां पहुंचना ही है। और एक बार एक गुरु ने उनसे 10,000 रुपए मंगवाए, दादा स्वयं लेकर पहुंचे वहां, और जब वो लेकर पहुंचे तो गुरुजी से पूछा कि गुरुजी ये लीजिए आपके लिए ले आया हूं, ऐसा क्या कार्य था आप बता देते। तब उन्होंने कहा कि अरे मेरा एक शिष्य जो है वो हार गया है जुए में, उसकी इज्जत को बचाने के लिए मैंने मंगाया। तब उनको लगा कि अरे जो शिष्य अपने, जो गुरु अपने शिष्य से एक गंदी आदत नहीं छुड़ा सका वो आगे क्या छुड़ाए। वहां दे के लौट आए, चुपचाप कुछ नहीं कहा। बॉम्बे की गद्दी संभाल रहे थे और वहां एक सदगुरु सदन है, वहां की गद्दी उनके बड़े साहबजादे संभालते थे, तो वहां बैठे वहां उनको प्रथम साक्षात्कार हुआ। सांध्यकालीन संध्या में संलग्न थे और उस समय उन्हें जो साक्षात्कार हुआ तो बहुत भयंकर विनाश का, दुनिया समाप्त हो रही है, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लोग इधर उधर भाग रहे हैं, भीषण त्राही त्राही का दृश्य देखा तो दोनों आंखों से अश्रु बहने लगे। उनको एहसास हुआ, कहा बस करो प्रभु बस करो, ये मुझसे नहीं देखा जा रहा, दिखाना है तो कुछ और, कुछ और। तो उनको एक बड़ा मनोहारी सतयुगी सृष्टि का दृश्य भी देखने में आया। तो जब उन्होंने वो सब देखा तो सोचा कि जो हमारे नए गुरु हैं उनकी कुछ कृपा होगी। वो देखने के बाद उनसे पूछा कि ये आपकी कृपा थी, आपके आधार से मुझे दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। उन्होंने कहा आज तक मैंने ही साक्षात्कार नहीं किया तो मैं भला तुम्हें कैसे करवाऊंगा। तो उनको लगा कि नहीं कुछ तो है, और उस दिन से वो उस खोज में लग गए कि वो कौन सी सत्ता थी जिसने मुझे साक्षात्कार करवाया, जिसने मुझे सृजन का साक्षात्कार करवाया। और इसी खोज में वो भारत की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी आ गए। वहां अपने एक मित्र के यहाँ निवास करते थे और सारा दिन मौन एकांत साधना करते थे कि मुझे उस शक्ति से मिलना है जिस शक्ति ने मुझे साक्षात्कार कराया। एक दिन पुनः उनको वहां साक्षात्कार हुआ और जब साक्षात्कार हो रहा था तो संपूर्ण कक्ष लाल स्वर्णिम प्रकाश से संपन्न हो गया। ऊपर से आत्माएं उतरती थीं और देवी देवताओं का स्वरूप बन जाती थीं। उन्होंने स्वयं वाणी भी सुनी, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो ये उच्चारण 3 बार कम से कम हुआ। समझ में नहीं आया कि निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम आखिर ये कौन सी सत्ता है, उतर तो देवी देवताएं रहे। तो वहां ही उन्हें प्रथम साक्षात्कार में ये एहसास हुआ कि परमात्मा मुझसे कुछ कराना चाहता है। उधर उनका मित्र खोज रहा है, कहाँ गए लखीराज बाबू कहाँ गए। तो एक सर्वेंट भेजा कि खोजो उनको। तो उसने जाकर बताया कि उनका तो ये हाल है। आए तो उन्होंने उसको शेयर किया कि आज मुझे परमात्मा ने साक्षात्कार कराया और परमात्मा ने ये कहा कि मुझे तुमसे ये कार्य कराना है। अभी होगा कैसे, कार्य तो कराना है। उसी दिन से उनके मन में वैराग्य की ज्योति प्रज्वलित हुई और ऐसी ज्योति प्रज्वलित हुई कि अब मुझे कुछ नहीं करना है। एक बड़ी मशहूर बात है, अलिफ को अल्लाह मिला और बे को मिली झूठी बादशाही। उन्होंने उसी समय कहा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आया तार अलिफ का, हुआ रेल का राही। मैं चला अपने पार्टनर को कलकत्ते में, उन्होंने ये मैसेज भेजा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, तुमसे जो बने मेरा जो हिस्सा हो वो मुझे दे दो, बाकी तुम अपना रख लो। बहुत उसने आग्रह किया कि आप कृपा करके एक बार तो आइए, मैं कैसे इतने बड़े बिजनेस को बांट दूंगा। बोला नहीं, जो तुम्हें चाहिए तुम रखो और जो चाहिए वो मुझे भेज दो, मैं स्वीकार कर लूंगा। उतने तक आपने सब बिजनेस तीनों गद्दियों का अपने संज्ञान से छोड़ दिया। अब छोड़ने के बाद पुनः सिंध लौटे और जब पुनः सिंध लौटे तो करें क्या। प्रारंभ में आपने ओम की ध्वनि का उच्चारण किया और जब आप ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे तो जो भी परिवार के सदस्य प्रियजन और पुरजन बैठते थे वो भी ओम की ध्वनि का उच्चारण करते थे। तो शुरू शुरू में सिंध में ये विख्यात हो गया कि ये दादा को सीख के आए और सत्संग कराते हैं, ओम की ध्वनि लगवाते हैं, ओम मंडली के नाम से वो विख्यात होने लग गया। बहुत सारे सिंध के मुखी परिवार की महिलाएं वहां नियम से सुबह शाम आने लग गईं, वहां पर बाकायदे सत्संग होने लगा। बाबा जो कि गीता पाठी थे और गीता बहुत पढ़ते थे तो गीता मंगवा के सबको हाथ में दी, लेकिन जब बहनें गीता लेकर बैठती और उसे खोलती थी तो ट्रांस में चली जाती थी, गीता पढ़ने की स्थिति नहीं आती थी। जब उतरती थी तो जो उन बहनों को साक्षात्कार होते थे वो बताती थी कि हमने ये देखा, हमने ये देखा। उधर उनके परिवार के सदस्य जो विदेश में अपना जॉब बिजनेस कर रहे थे वो लोग लौटे, बोला ये क्या एक नया रंग आ गया सिंध के अंदर और क्या हो रहा है, ये हमारे सब परिवार की महिलाएं कहाँ जा रही हैं। तो उनको लगा कि अरे इनका तो सब खान पान रंग ढंग सब बदल गया। बोला इसको बंद कराओ, जरूर कुछ इन्होंने जादू कर दिया है, इसको बंद कराओ। अभी बंद कराने के लिए क्या करें, कैसे करें? तो लोगों ने मिल करके उसको बंद कराने के लिए एक व्यक्ति को मुकर्रर किया, उसको कुछ पैसे दिए, उसको कहा कि तुम जाओ और ऐसा करो इस दादा को खत्म कर दो। बड़ा नामी गिरामी था इस कार्य के लिए और वो पहुंचा वहां। तो उसने कहा मुझे दादा से मिलना है। बहनों ने कहा भाई अभी वक्त नहीं है, अभी नहीं, तो शाम को आप आइएगा तो मिल लीजिएगा। बोला नहीं मेरे को अब भी मिलना है। ठीक है, दादा सुन रहे थे तो उन्होंने कहा भेजो, कौन आया है, बच्चा आया है मिलने तो इसको भेजो। सामने आया, बोला मुझे कुछ सवाल पूछने हैं। तो उन्होंने कहा भाई ठीक है पूछो, क्या पूछना है बच्चे? बोला नहीं ये बहनों को हटा दीजिए, मुझे आपसे ही प्रश्न पूछने हैं। तो जब बहनें हट गईं, एकांत पाया चक्कू निकाला मारने के लिए, आगे बढ़ा तो उसे अपने इष्ट का साक्षात्कार हुआ। जब इष्ट का साक्षात्कार हुआ तो पीछे हटा, एकदम पीछे हटा। दोबारा फिर जब उसे बाबा नजर आया तो फिर वो लेकर बढ़ा, फिर इष्ट का साक्षात्कार हुआ। एक प्रयास और जब तीसरी बार हुआ तो उसने वो चरणों में रख दिया, बोला मुझे क्षमा करें, रोया आंखों से, बोला मुझे बरगला दिया गया था और मैं लोगों के बहकाने में आ गया था, मुझे इस कृत्य के लिए उन लोगों ने नियुक्त किया था, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और वहां से वो चला गया। अभी लोगों को लगा अरे इतने बड़े आदमी को हमने भेजा, नामी गिरामी, और बोल के आया मैं करके आऊंगा इस काम को, अभी क्या है, अभी हमको कुछ करना पड़ेगा। तो सत्संग में जो लोग आते थे बोला ऐसा करो ये जिस भवन में होता है ना इस भवन को ही समाप्त कर दो। बड़ी परीक्षाएं आई स्टार्टिंग में और उस भवन को खत्म करने के लिए फ्यूल पेट्रोल ये सब लेकर के वहां से वो लोग निकले। उन्होंने चारों ओर डाल दिया। उस भवन का नाम था लखीराज भवन। और उस दिन पिताश्री को पता नहीं क्या संकल्प आया, 5 बजे ही सुबह सुबह सबको लेके बाहर समुद्र के किनारे कराची में बीच पे चले गए थे। बोला आज दोनों सागर का मिलन कराऊंगा, एक ज्ञान सागर परमात्मा का, एक दुनिया के सागर का, चलो वहां बैठकर सत्संग करते हैं। यहां इन्होंने चारों ओर पेट्रोल डाल के आग लगा दी और जब वो जल रहा है उधर से दादा सब बच्चों को लेकर के आ रहे हैं। लोग देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, हमने तो सोचा था जल जाएंगे, हमारे भी जल जाएंगे हर जाने, लेकिन ये तो सब सुरक्षित है। तो वो धरने पर बैठ गए वहां, लेकिन बच्चों को देखकर तरस पड़ता था। कुछ खा लो, कुछ पी लो, कुछ ले आए, कुछ कोल्ड ड्रिंक। बोला हम तो कुछ खाते ही नहीं। तो उन्होंने देखा कि ये तो बहुत दृढ़ है, उन्हें अपना धरना उठाना पड़ा। तो ये वहां से जो ओम मंडली की शुरुआत हुई कराची में, हैदराबाद से कराची आए। कराची में आपने एक बोर्डिंग खोला, बच्चों का अलग, माताओं का अलग, भाइयों का अलग, और दादा खुद अपने परिवार के साथ अलग निवास करते थे। और धीरे धीरे सबको संस्कारों में ढालना शुरू किया। तो जब संस्कारों में बच्चे ढलने लगे, उसी समय पार्टीशन का बहुत शोर। जब पार्टीशन की बात आई, आप जानते हैं कितना खून खराबा हुआ उस समय चारों ओर। तो जिला कलेक्टर ने कहा कि आप अपने भवन में रहें और जहां बोर्डिंग है बच्चों को भी बाहर मत निकलने दें, वो वहीं साधना करें। तो आप सोच सकते हैं 1937 से 1950 तक उन लोगों ने वहां अखंड तपस्या की। जो भी बहन भाई थे 14 वर्ष वो तपस्या के वहां संपन्न हुए और पुनः पिताश्री जी को साक्षात्कार हुआ। उन्हें पुनः संदेश मिला कि भारत वो भूमि है जहां से, तब तक दो भाग हो चुके थे, जहां से संपूर्ण आध्यात्म की लहर फैलेगी और संपूर्ण विश्व का उद्धार होगा। आपको वहां रहना है, वहां जाना है, वहां से इस कार्य को शुभारंभ करना है। अभी वहां से कार्य कैसे शुभारंभ होगा, कहां जाएंगे वहां? इधर इन बच्चों के माँ बाप जो यहाँ आ गए थे, उनकी बहुत तमन्ना कि हम सब यहाँ आ गए और हमारे बच्चे या परिवार की महिलाएं वहां हैं, कैसे भी वो यहाँ आ जाएं, इंडिया आ जाएं, हम सब करेंगे, हम सब देंगे। पिताश्री जी को बड़े आश्वासन भरे पत्र और खबरें भेजी, आप आइए, आप आइए। उधर भगवान का संदेश मिला था तो पिताश्री जी ने एक 4-5 सदस्यीय ग्रुप यहाँ मंडल भेजा कि जाओ देख के आओ भारत में वो कौन सी आध्यात्मिक पहाड़ी है जिसके लिए मुझे संदेश मिला। तो उन्होंने कई स्थानों पर भ्रमण किया, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो पहाड़ी कौन सी है। वो लौटने लगे, पुनः बॉम्बे में एक परिवार के साथ ठहरे हुए थे तो वहां उन लोगों ने चर्चा की। एक गुरु आए हुए थे, सिंधियों के गुरु थे, आध्यात्मिक पहाड़ी कौन सी है? तो कहा अरावली का पर्वत वो आध्यात्मिक पहाड़ी है जहां बड़े बड़े ऋषियों ने तपस्या की। और आपको बताएं कि ये अरावली एक ऐसा पर्वत है जहां बहुत सी गुफाएं हैं, जहां बैठकर संतों ने अहिरनिश तपस्या की है। यहां स्वयं सती अनुसुईया और ऋषि अत्रि ने, यहां वो निशानियां हैं, गुरु शिखर वो स्थान है जहां स्वयं दत्तात्रेय ने बैठकर तपस्या की थी। यहां व्यास का आश्रम है जहां पांडव एक रात रुके थे युद्ध विजय के बाद। ये कहावत मशहूर है कि यदि एक दिन भी वहां कोई निवास करता है तो 1,000 यज्ञ का उसे पुण्य प्राप्त होता है। यहां अधर देवी का मंदिर है, यहां आदिदेव का मंदिर है, जो बताते हैं कुछ तो है यहां, कुछ तो है। तो वहां से अरावली का पर्वत चयन किया गया। राजघरानों के बड़े बड़े स्थान जो कि उनके हॉलीडेज मनाने के लिए बने थे यहाँ मौजूद थे। और ये विचार किया गया कि लगभग 300 भाई बहन, 350 एक साथ रह सके, कोई तो स्थान मिले। तो वर्तमान समय जो हमारा पांडव भवन है, पोकरान हाउस के नाम से मशहूर था, उस स्थान को चयन किया गया। वहां के राजघराने से मैनेजर से संबंध करके उसको लिया गया। फिर 5 मई 1950 में संपूर्ण वो जो ओम मंडली का ग्रुप था वो पूरा अलौकिक परिवार एक स्टीमर के माध्यम से यहाँ आए और गुजरात के उस बंदरगाह पर उतरे, पोरबंदर। तो वहां से वो फिर यहाँ आए, तो जो पूंजी थी सारी लगा दी गई थी। और वहां के जिला कलेक्टर जब विदा कर रहे थे तो अश्रु बहा रहे थे इस बात के लिए कि मेरी सेवा में कौन सी कमी रह गई और आप क्यों जा रहे हैं। जो 14 वर्ष इन्होंने तपस्या की तो सारी खाद्य सामग्री वो जिला कलेक्टर भेजा करते थे, दूध हो सब्जी हो। दादा से बार बार पूछते थे आप जा क्यों रहे, और जब जा ही रहे हैं तो सारे अधिकारियों को लगाया कि इनकी कोई चीज रह ना जाए, सुई भी अगर हो तो ये लेके जाएं, नहीं तो हम अपने को क्षमा नहीं कर पाएंगे। तो वहां से सारे लाओ लश्कर के साथ जब पिताश्री जी इधर आए और यहाँ पोखरान हाउस में निवास किया, जो पूंजी थी वो लगा दी थी। अभी क्या, अन्य पूंजी कहाँ से आएगी, मांगना कहीं था नहीं। जो कुछ शेष था उस समय फिर पिताश्री जी ने वंदे मातरम करके 5 बहनों का एक विशेष ग्रुप बनाया, वंदे मातरम किया और उनके आगे वो सब समर्पित कर दिया। आज से यज्ञ आपके हवाले, आप इस यज्ञ को संभालेंगे। और वो दिन था दीपावली का जिस दिन इसका नाम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पड़ा। ज्ञान का कलश माताओं बहनों के सर पर रख दिया। आज भी पूरे विश्व के अंदर कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिसको बहनें संचालित कर रही हों। आज 5 महाद्वीपों में जो हजारों शाखाएं हैं उनका संचालन बहनें कर रही हैं। ऐसा नहीं कि भाई नहीं है, भाई तब भी थे, भाई आज भी हैं। भाई बैकबोन बनकर के, सुरक्षा प्रहरी बनकर बहनों के साथ सदैव रहे। लेकिन ये ध्वज माताओं बहनों के हाथ में दिया, ध्वज वाहक बहनें बनी जिन्होंने कहा था हम बहुत सहयोग देंगे, आप आ तो जाइए। उनके मन में थोड़ा कहीं छल कपट था कि आ जाए फिर जब कुछ खाने पीने को नहीं होगा तो क्या होगा, ये लोग लौट के हमारे पास वापस आ जाएंगे और दादा का ये संगठन बिखर जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ और दादा ने उनकी पालना जिस ढंग से की थी बहुत सही अंदाज में की थी। दिनचर्या जो बनाई थी वो अपने आप में अद्भुत थी। अमृत बेले सुबह 3:30 बजे सभी साधक साधिकाओं का जब योग शुरू होता था तो एक गीत बजता था और उस गीत के माध्यम से जागरण होता था। कोई किसी को झकझोर के नहीं जगाता था कि उठो तुम अभी तक योग में नहीं चले। रात्रि को सोते थे उस समय भी एक गीत बजता था। तो जो तपस्या वहां की थी वो यहां भी काम आई और वही तपस्वी जीवन उनका चला। बहुत सारी कहानियां हैं, मैं विस्तार से सुनाऊंगी तो बहुत सारा समय लग जाएगा कि कैसे दादा ने यहां अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में उस यज्ञ की पालना की जहां बहुत सी चीजों का अभाव था। क्योंकि वहां तो वेल सेटअप था सिंध में, यहां आने के बाद एक नए अभियान की शुरुआत थी। किंतु कहीं हाथ नहीं फैलाना है, किंतु किसी से कभी कुछ कहना नहीं है। और यज्ञ चलता रहा, जो छोटे छोटे बहनें थी वो बड़े हो गए थे और उन्हें फिर सेवा पे यहां से भेजा गया। ये जो अभी बहन परिचय दे रही थी, जब यहां से ये सब निकले तो सबसे पहला स्थान सेवा केंद्र बनाने के लिए दिल्ली चुना गया। और दिल्ली में हमारी दादियों का जो ग्रुप गया सबसे पहले लक्ष्मी नारायण के मंदिर में, वहां जाकर सेवाएं शुरू हुई। बहुत अच्छा लगता था वहां के पुजारी को जो सत्संग चलता था, लेकिन समय ने साथ नहीं दिया। एक दिन एक ट्रस्टी ने आकर के बोला, अरे कहां तुमने इन देवियों को बिठा लिया, बोला तुम्हारा तो मंदिर का चढ़ावा ही खत्म कर देंगे, सब सारे लोग उन्हीं के पास जाके बैठते हैं, उन्हीं का सुनते हैं, खाली करवाओ इनसे, अभी कहां जाएंगे। तो उस समय का भारत केसरी जमुना के कंठे पर जाकर के बहने रही और उसने कहा हमारा ये स्थान है। वो स्थान कहीं से बंद नहीं था, एक सेट पड़ा था, बहने वहां भी रही। अद्भुत थी वो कहानी कि रात भर वो भाई पहरा देता था बाहर, इन बहनों को कभी कोई क्षति न पहुंचा दे। जब वो भारत केसरी बना तब उसने आके पैरों में सर रखा और बताया कि आप लोगों की देवियों की कृपा से मैं ये बन पाया हूं। धीरे धीरे उस एक केंद्र से 1954 में ये सब प्रयाग की धरनी पर पहुंचे। प्रयाग में इन्होंने सेवाएं दी तो न कोई परिचय था, न कोई नामाचीन संस्था थी, न कोई लोग जानते थे ब्रह्मा कुमारी इसको। मैं एक ऐसी घटना सुनाऊं आपको प्रयाग की। मैंने जब वहां जाके चार्ज लिया था 1980 में, तो ऐसे तो यज्ञ का इतिहास सुना हुआ था, लेकिन एक ब्लॉग बनवाना था और ब्लॉग बनवाने के लिए मैं प्रयाग ब्लॉक वर्क्स में स्वयं गई थी। तो उसने मुझसे पूछा भाई ने, वो प्रकाशमणि कहाँ है। तो मुझे बहुत अंदर से खराब लगा कि ये किस तरह बात कर रहा है। तो मैंने उनसे कहा आप कैसे जानते हैं, बुजुर्ग थे। कहने लग गए कि बेटा वो तुम्हारी जैसी थी जब यहां आई थी, और उस समय मैंने उनको 1,00,000 पर्चे छाप कर दिए थे। मैंने दोनों हाथ जोड़ लिए, श्रद्धा से मेरा सर झुक गया। तब मैंने उन्हें बताया कि वो इस समय हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है। ये 1980 की बात है। तो दादी जी जब वहां गए हुए थे, आज भी मैं उस धर्मशाला को नमन कर देती हूँ कि 8-9 लोग रहते थे और वहां से उन्होंने सेवाएं दी। तो कहीं कुछ नहीं था उस समय भी, वो लोग बैठकर बालू रेती पर गंगा के किनारे सेवा कर रहे थे। एक विद्यालय में प्रोग्राम किया था तो एक एडीएम की बेटी उस विद्यालय में पढ़ती थी, उन्होंने कहा पापा आपके पास तो वहां स्थान है ना, हमारे यहाँ स्कूल में दीदियां आई थी उनके पास स्थान नहीं है, आप अपना स्थान दे सकते हो ना उनको। तो ये सब जानते हैं कि अधिकारियों को वहां ही कॉटेज बना के देते हैं। तो उन्होंने अपना कॉटेज दिया कि भले बहने रहे, मैं तो रहता नहीं हूं। वहां से सेवाएं हुई। वो प्रयाग की धरनी है जहां से फिर निमंत्रण मिलने शुरू हुए और सब स्थानों के निमंत्रण मिले। यज्ञ में परंपरा बनी कि अगर कहीं कोई केंद्र खुलेगा तो जो निमंत्रण देगा निमंत्रण पर ही खोले जाएंगे। और वहां से एक के बाद एक, वहीं से कानपुर निमंत्रण मिला, वहीं से पटना निमंत्रण मिला, वहीं से आगे लखनऊ का निमंत्रण मिला, वहीं से और स्थानों के निमंत्रण मिले। और फिर हमारी ये दादियां, जिन्हें हम दादियां कहते हैं, ये बहनें निकली और इन्होंने जगह जगह केंद्र खोले। हमारी प्रथम इस विश्वविद्यालय की जो मुख्य संरक्षिका मुख्य प्रबंधिका रही हैं, वो थी मातेश्वरी जगदम्बा। बहनों में ही एक बहन जिसको बाबा ने चुना था, माँ सरस्वती का रूप थी। और उनके जीवन में उनकी धारणाएं, एक दिन जो बाबा के महावाक्य उच्चारण होते थे वो महावाक्य दूसरे दिन उनके जीवन में नजर आते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी धारणा को एक दिन या एक मास लगा हो। उन्होंने बहुत कुशल प्रबंधन से इस यज्ञ को चलाया था। जब उन्होंने वंदे मातरम किया पिता श्री जी ने, तो इस यज्ञ की पालना 1964 तक बखूबी उन्होंने की मातेश्री जी ने, और उसके बाद 1965 में उन्होंने शरीर अपने पार्थिव शरीर से विदा ली, उसकी संपन्नता की। पिताश्री जी ने 1965 से 69 तक पाला, और 69 में पिताश्री जी ने कर्मातीत अवस्था प्राप्त की। उस समय दादी प्रकाश मणि जी को चुना था और उनको इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय का मुखिया बनाया था। उन्होंने निरंतर 40 वर्ष इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को पल्लवित किया, पोषित किया, और जब उन्हें मिला था तो मुश्किल से 100 केंद्र थे। उसके बाद ये निरंतर बढ़ता गया, निरंतर बढ़ता गया, और आज लगभग 7000 केंद्र संपूर्ण भारतवर्ष में 5 महाद्वीपों में एशिया के कोने कोने में फैले हुए हैं। तो ये आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी की देन। दादी जानकी जी जिन्होंने पश्चिमी देशों की पालना की, मैं कहना चाहूंगी कि भारत की संस्कृति संस्कारवान युवा पैदा करती है। प्रारंभ से ही उन्हें बहुत कुछ दिया जाता है, लेकिन पश्चिम की संस्कृति जो हमारे यहाँ से कहीं कहीं विपरीत पड़ती है खान पान में, कुछ धारणाओं में, लेकिन दादी जी ने पश्चिम में जाके दीप जलाया और निरंतर आगे बढ़ा। यूके से प्रारंभ हुआ। तो ये एक अद्भुत कहानी विस्तार की, आज जहाँ आप बैठे हैं वो उसका विस्तार का भी विस्तृत मुख्यालय माना पांडव भवन से आगे बढ़ते हुए आज यहाँ पर 5 स्थान हो गए। तो ये दादी जी के बाद 2007 में जब दादी जी ने अपने शरीर को पूर्ण किया तो दादी जानकी जी जो स्वयं सिद्धा थी, प्रज्ञा शक्ति से संपन्न थी, उन्होंने इसकी बागडोर संभाली और पश्चिमी देशों की बागडोर हमारी जयंती बहन ने संभाली। वो यहाँ आकर के भारत में रही, वही प्यार, वही स्नेह, वही धारा योग निष्ठा की उन्होंने यहाँ प्रवाहित की। और जब उन्होंने शरीर पूर्ण किया तो दादी हृदय मोहिनी जी ने उसे संभाला। दादी हृदय मोहिनी जी ने बहुत कम समय इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका के रूप में व्यतीत किया। आज वर्तमान समय हमारे सामने दादी रतन मोहिनी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका है, और ये ज्योति आज मशाल बनकर न केवल भारत को वरन संपूर्ण विश्व को आलोकित कर रही है। यहाँ जो कहते हैं ब्रह्मा ने नव सृष्टि की रचना की, तो बहुत बार मन में सवाल उठता है, मैं केवल 5 मिनट और लूंगी। हम कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, मगर कभी पूछा, कभी सोचा अपने मन से कि ब्रह्मा ने किस तरह सृष्टि की रचना की होगी? आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अनादि अविनाशी सत्ताएं, आत्मा रची नहीं, परमात्मा रचा नहीं, प्रकृति रची नहीं, आखिर ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो कैसे रची? तो ब्रह्मा द्वारा उस जगत नियंता ने मुख वंशावली सृष्टि रची। मैं जिसकी कहानी आदि से अभी तक सुनाती चली आई, पिताश्री दादा लेखराज जी की, उनको ही नाम ब्रह्मा दिया गया, और उनकी मुख वंशावली जो सृष्टि रची गई वो ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी कहलाए। अगर हम वेदों और शास्त्रों की ओर जाएं, तो हम अमृत पुत्र कहलाते हैं, हम ब्रह्मा की संतान कहलाते हैं, लेकिन लिखते कभी नहीं है कि हम ब्रह्मा कुमार हैं या ब्रह्मा कुमारी है। हम लिखते हैं सिंह हैं, शर्मा हैं, गायकवाड़ हैं, श्रीवास्तव हैं, पांडे हैं, हम ये लिखते हैं क्योंकि हमको वही सिखाया गया, लेकिन हम ब्रह्मा की संतान हैं, हम अमृत पुत्र हैं, ये कौन लिखेगा, ये कौन लिखेगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि ओही जाने ही जेहि देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। गीता में भी है कि हे अर्जुन, मुझे सब नहीं जानते, मुझे कोटों में कोई, कोई में भी कोई, मुझे विरला ही पहचानता है। तो जिन्होंने उसको जाना, जिन्होंने माना, उन्होंने अपने आप को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहलाना शुरू किया। आज यहाँ जो आप श्वेत वस्त्रधारी देखते हैं, ये सब ब्रह्मा कुमारी बहनें, ब्रह्मा कुमार। ऐसे तो संपूर्ण जगत परमात्मा की रचना और ब्रह्मा की रचना है, लेकिन जिन्होंने जाना, पहचाना और माना, वो ब्रह्मा वत्स कहलाए। तो आज उस सृजन की उसी कड़ी में आप सब यहाँ एक नए अभियान पर आए हैं, आपका पुनः कोटि कोटि स्वागत है उस पोखरान हाउस से। ये शांतिवन बना, जिस हॉल में आप बैठे हैं विदाउट पिलर, यहाँ 25,000 भाई बहन एक साथ बैठ सकते हैं और निरंतर वो गतिविधियां यहाँ जारी रहती हैं, सेवाएं चल रही हैं। आपके अपने अपने शहरों, जिलों केंद्र बने हुए हैं जहाँ से आप सब पधारे हैं। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। अभी तक आपने सुना है, अभी आप 4 दिनों में करीब से रात दिन देखेंगे। सुनने और देखने में बहुत फर्क होता है, और जब आप देखेंगे तो निश्चित है कि वो आपके हृदय में उतरेगा कि कथनी और करनी उस प्रभु ने कैसे एक करना सिखाई है, जो यहाँ के बहन भाइयों के आचरण में आपको मिलेगी। ओम शांति।
ओम शांति। ब्रह्मा कुमारीज का 1937 से लेकर के आज तक का इतना लंबा सफर, इतना लंबा इतिहास दीदी जी आपने बहुत अच्छी तरह से हम सबको अवगत कराया। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी। आप सबको ये मैं बताना चाहूंगी कि शाम को जो उद्घाटन सत्र रहेगा इस ग्लोबल समिट का, उसके बाद आप सभी भाई बहनों को ईश्वरीय सौगात, गॉडली गिफ्ट आपको इसी हॉल में उसी समय सबको मिलने वाली है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आप जहां कहीं भी हो, प्रोग्राम पूरा होते ही, शाम का सत्र पूरा होते ही आप इस हॉल में पहुंचेंगे और वो ईश्वरीय सौगात, गॉडली गिफ्ट आप सभी प्राप्त करेंगे। ये सेशन यहाँ पर ही समाप्त हो रहा है। अगला सेशन जो है सुबह 10 बजे इसी हॉल में शुरू होने वाला है। तो मैं आपसे विनंती करती हूँ कि नाश्ता आदि करके आप 9:45 तक, 9:45 तक आप सभी यहाँ इस हॉल में अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे। ओम शांति। एक 2 मिनट के लिए हम सब परमात्मा की याद में बैठेंगे और उसी के बाद में ही आप इस हॉल से प्रस्थान कर सकते हैं।
की हर लड़ी कीमती है। व्यर्थ जाने से इनको बचा लो
प्रभु, चिंतन करो प्रभु जानो, तो घड़ी मन प्रभु में लगा लो। Johnny.